प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
फिर उसने कान पकड़ लिए। परमात्मा बोले, भाई देख बात सुन, अब मैं तुझे उससे नारा करना चाहता था जिस अड़ंगे में जिस दलदल में तू फंसा पड़ा था। ज्ञान समझाया खूब बुरी तरह कई दिन, और फिर कहा बेटा जावेसिक इब राज भी कर ले, पर नेक नीति से करना, आत्मा मत दुखाना और भक्ति भी कर ले। वो बोला नहीं, यह अज्ञान आदो दाता, नरक से मुश्किल से निकल आया हूं, भक्ति नहीं हो पाओगी, आज इसी स्थिति है, बच्चे सैने हो रहे अपने आप संभालेंगे। तो इस प्रकार उस अब्राहिम सुल्तान अदम को परमात्मा ने उस दलदल से निकाला। हम मांग गए या दलदल के गणा दन दे दाता, दो कोठी बनवा दे भी दाता, परमात्मा के बता अब आपने सफर चलना है भक्ति का, भक्ति मार्ग पर घर पहुंचना है, तो आप यात्री हो, और यात्री के घर में चाहे कितना धन पड़ा हो वो केवल आवश्यक वस्तु लेकर सफर कर सकता है। जब सारे घर ने सिर पर धर कर चलेगा तो 10 कदम नहीं चल सकता हो। तो इस प्रकार हमने उस परमात्मा के सफर पर चलने के लिए संसारिक परंपराओं और ये सब कुछ त्याग के हल्के से होकर चलेंगे, तभी हम अच्छी स्पीड खींचेंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी को बता रहे हैं, हम कारवान हो आए मैलों पे ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना तुम रहते कहां दीवाना, दूजे का सिद्ध गवन किया रे वो डेरा महल सरा लिया रे। दूजे का सिद्ध यानी यात्री बनकर गए, और राजा के महल को डेरे को मैंने सरा बताया। जब हम महल सराय बताई सुल्तानी को त्यावर आई, चक्कर काट गया शेर घूम गया उसका। जब राजा को मैंने ये बताया कि ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी रहे इसी सरा में गी दी, ऐसे ही तू उठ चल जाई, इसलिए मैंने तेरी ये महल सरा बताई। तो कहते हैं तब सुल्तान अदम को चक्कर आया था इस बात ने सुन के। पुण्यात्माओं, पिछले पुनकर्मी प्राणियों का ये बात जल्दी असर करती है। अब आप थे पुनकर्मी प्राणी, आपने थोड़ा सा ज्ञान सुना और खेच का आगे, तो ऐसे इसके साथ बन रहा था कि सचमुच यह बात तो सारी सच्ची, जुलम हो गए तो सब चले जाते हैं। जब हम महल सराय बताई सुल्तानी कुतावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सरा में गिदी, ऐसे ही तू चल जाई यो हम महल सराय बताई, उठे पाद सहा सुल्ताना वहां का सिद्ध गैब छुपाना। जो बादशाह उठे और तरणाम पढ़ने लगे, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए उस यात्री रूप में। तीजे बांदी हो सेज बिछाई, त तन तीन कोर देखाई तिज बांदी हो सेज बिछाई तन तीन कोर देखाई तब आया अनहद हासा सुल्तानी गहे खवासा मैं एक घड़ी से जा सोई तात मेरा ये हाल होई जो सोवे दिवस और राता उनका के हाल विदाता। अपरमात्मा बांदी रूप में सो रहे थे, उसने कोरडे मारे तीन तन पे, तो परमात्मा ने कहा था मैं एक घड़ी से जा सोई तात मेरा ये हाल होई और जो सोवे दिवस और राता उनका के हाल विदाता। मैं न्यों हंस रही हूं। तब गै भी बहे खवासा सुल्तानी हुए उदासा यो कौन छलावा भाई या का कुछ भेद न पाई चौथे जोगी हम भय जिंदा जिंदा महात्मा बनकर हम जंगल में बैठे चौथे जोगी भय हम जिंदा लिन तीन कुत्ते गलफंदा दिनी हम साकल डारी सुल्तानी चले बगबाड़ी बोले बाद सहा सुल्तान कहां से आए जंद दीवाना। जंगल में बैठ के कुत्ते वो बना के सरोवर वगैरह झोंपड़ी तो बादशाह सुल्तान कहते तू कहां से आया जंद ये तीन कुत्ते क्या की जाए इनमें से दो हमको दी जाए अरे ये तेरे बाप दादा हैं भाई इन बड़ी बद फैल कमाई यो लो लंगर शीस लगाई तब कुत्तों धूम मचाई अरे तेरे बाप दादा हैं भाई इन भी बड़ी बद फैल कमाई अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी तू समझे क्यों ना गिदी अब तू तकत बैठ कर भूली तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू राजा बनकर सिंहासन पर बैठ कर भूल गया भगवान को तेरा फांसी लगेगी कुत्ता बनेगा तू अगले जन्म में। जोगी जंदा गैब भयारे हम ना कुछ भेद लहारे बोले बाद सहा सुल्तान जा खड़े अमीर दीवाना ये चार चरित्र बीते हम ना कुछ भेद न लीते तब लगे ज्ञान के बाना छोड़ी बेगम माल खजाना। अब जगत और भगत के कितना अंतर होता है। जब अब्राहिम सुल्तान आदम रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में गर्मी का मौसम था, सावन का महीना था, थोड़ी थोड़ी फुहार सी गिर रही थी, कभी रुक जाती थी, ठंडी हवा चल रही थी। एक व्यक्ति, उसका कोई संतान नहीं, उसके एक औरत और स्वयं और एक गाय ले रहा दूध पीने के लिए और एक झोंपड़ी में रह रही। अब्राहिम सुल्तान रात्रि के समय उनकी झोंपड़ी की आड़ में हवा से बचने के लिए बैठ गया और वो उठकर बतलाने लगे आपस में कि बड़ी बढ़िया वर्षा कर दी खुदा ने, बढ़िया चारा होएगा और गाय खूब दूध दिया करेगी, उसकी पत्नी कह रही थी। तो वो क्या कहता है कि अपनी तो ऐसे ठाट हो गए इस बलख शहर के अब्राहिम सुल्तान अदम के भी कोई ना होंगे यानी और वो पीछे सोना बैठे बैठे कि अपने तो इसी मौज हो जाएगी, इस अब्राहिम के भी नहीं होगी राजा की। अब उसने यह बात सुनी तो देखो भगत का तो मन में आती है कि देख इसके के भूल पट रही है, भोले आदमी का एक औरत है, एक गऊ है, ढांडी, अपनी देसी भाषा में हमारे यहां ढांडी कहते हैं गाय को और औरत को रंडी कहते हैं। गरीबदास जी ने तो लैंग्वेज बोली है अपनी देसी कति खड़ी भी बोल रखी है बहुत स्थानों पर। अब उसने उठकर देखा कि ला इसको थोड़ा ज्ञान समझा दूं। वहां जाकर उन्होंने वालेकम सलाम करी, उन्होंने उत्तर दिया कि भाई कौन है तू। उसने कहा कि आप क्या बोल रहे थे, अभी मैं यहां बैठा था आपके पीछे, आप कह रहे थे कि हमारी ऐसी मौज हो जाएगी अब्राहिम सुल्तान की भी नहीं, कहां हो रहे, बढ़िया चारा हो गया, गाय बढ़िया दूध देगी, ठाठ से रहेंगे। तो उसने कहा भाई ये ठाठ कितने दिन रखोगे, तुम तुम्हारे दादे परदादे चले गए, तुम भी जाओगे, कुछ भक्ति करो भगवान की। कहने लगे तू कौन है भाई? कि मैं वो अब्राहिम सुल्तान अधम राजा हूं जिसकी तुम चर्चा कर रहे थे। वो कहने लगे भाई क्यों, तू कैसे आ गया ऐसे? कि मैंने छोड़ दिया भगवान के लिए वो राज, और आप भी भक्ति करो, छोड़ो इस फंड ने। जो बोला चल अपना काम कर, या तो तू वो अब्राहिम सुल्तान नहीं, और जैते अब्राहिम सुल्तान नहीं तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं, इसी बढ़िया चीज छोड़ के आ गया तू। अब वो फिर अपनी किस्मत को सराहता है वहां मालिक के ज्ञान को आधार बना के, कि रंडी ढांडी ना तुझे, रंडी माने एक औरत और ढांडी माने गाय। कहते रंडी ढांडी ना तुझे ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छूट गया थी कोई पछली लागे। होई होई। पिछली लाग माने कोई पिछले गजब के संस्कार थे दाता, एक जीव पे यू ना छूटता, इसने ठाठ में निरकल गधा बनकर कुत्ता बनकर घूमा मूर्ख, और मेरे पर रजा करती दाता ने बलख बुखारा छुटवा दिया दाता, कोई पिछला गजब का संस्कार था ना न्यू छूटे। तो आप वो आत्मा पुण्यात्मा हो, आपकी कोई पिछली लाग है, यहां आना कोई हंसी खेल नहीं है, अभी सरजा को बना के रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो भी ध्यान से सुनो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की असीम रजा होती है, इस काल के लोक में वही सत्संग प्राप्त करते हैं, और सत्संग सतगुरु करते हैं। जैसा कि आप सुनते हैं परमात्मा की वाणी में, कबीर जी की वाणी में, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए वो बौर नहीं लगता डार, कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार उपलब्ध नहीं होता शीघ्र सी। और इससे भी दुर्लभ जो वस्तु है वो गुरु है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है, पहले तो उसने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी के पुजारी वो किस कैटेगरी के होते हैं वो बताया, फिर 16-17 में और 18 में उसने ब्रह्म पुजारियों के विषय में यानी अपने पुजारियों के विषय में ज्ञान दिया, और उनके विषय में बताया कि ये ज्ञानी 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। इन 3 कैटेगरी के भक्तों को तो रिजेक्ट किया है, चौथे ज्ञानी को वो कहता है ये अच्छी आत्मा है क्योंकि ये मेरी भक्ति करते हैं। और ये पहले कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो उनका जो भक्ति का जो लाभ है अक्षीणिक है, और वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते उन साधनाओं से, उनमें गिरावट बहुत आ जाती है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 14 में कहता है ये मुझे भी ना बजते, ये त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। फिर ये अपनी भक्ति वालों के बारे में कह रहा है कि ये 3 तो रिजेक्टेड हैं, ये 3 अच्छे नहीं हैं, अर्थ और अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे ज्ञानी के विषय में बताया है कि ये नेक आत्मा है, इन्होंने परमात्मा के लिए ही इन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर रखा है। इनको ये ज्ञान हो गया है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है, और उन ज्ञानियों को यह भी पता चल जाता है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी देव पूज्य नहीं होता। मोक्ष होगा उस परम पूर्ण परमात्मा से, परम अक्षर ब्रह्म से। तो वो क्या बताता है कि उनको ज्ञान तो ये हो गया कि अन्य देवताओं की पूजा उचित नहीं और केवल एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम का जाप वेदों से ग्रहण कर लिया, हठ योग ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया, और उस आधार से उन्होंने साधनाएं की, लेकिन वो इस ब्रह्म की साधना में ही गति में ही रह गए। ब्रह्म तक की इनकी साधना बनी, ब्रह्म लोक में गए, फिर वापस जन्म मृत्यु में रही। जिस कारण से ये कहता है सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली ही उस अनुतम यानी घटिया गति में सचित रहे। अब कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि पहले तो ये मेरी भक्ति नहीं करते। अब यहां थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आप जी ने। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अन्य देवताओं की पूजा जो करते हैं वो मूर्ख हैं और ये मेरी भक्ति भी नहीं करते, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ये जितने भी ऊपर के ये देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी और जितने ये देवताओं का राजा इंद्र, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट चला रखे और यहां इस पृथ्वी लोक पर जो साधना साधक करते हैं, इन्होंने अपने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, अपने सत्र के गुरु मार्गदर्शक। जो ब्रह्मा जी की पूजा करता है वो तो कोई इक्का दुक्का मुश्किल से कोई मिलेगा वर्तमान में, और जो विष्णु जी की करता है, ब्रह्मा जी की पूजा जो करते हैं वो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं, विष्णु जी की पूजा जो करते हैं विष्णु जी के लोक में चले जाते हैं, और शिव की पूजा जो करते हैं शिव जी के लोक में जाते हैं, वो पुण्यकर्मी प्राणी ही जाते हैं। ऐसे ही गणेश की पूजा करने वाले गणेश के लोक में जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा के मंत्र विशेष हैं, और इसी प्रकार दुर्गा और ब्रह्म की पूजा करने वाले उनके लोकों में चले जाते हैं। ये क्या करते हैं कि उन पुण्यकर्मी प्राणियों के जो भक्ति धन से युक्त होकर वहां जाते हैं, उन्हीं के पुण्यों से कुछ अपना डिस्काउंट लेते हैं और मन मर्जी के रेट लगाते हैं, वहां की सुविधा जो उनको देते हैं, खाने पीने विमान घूमो फिरो, वो तो एक रेस्टोरेंट है, उससे ये अपने लोकों में गुजारा कर रहे हैं जैसे होटल का मालिक होता है। जितना बढ़िया स्टैंडर्ड का होटल होगा उसमें घने धनी लोग जाएंगे और मुंह मांगी कीमत देंगे, वो कुछ भी रेट लगा दो क्योंकि उनके पास धन इतना है, और वो फिर उसी से फिर अपनी रोजी रोटी और ठाठ बाठ को ठीकार हेलीकॉप्टर तक खरीद लेता है वो होटल का मालिक। तो ये सभी होटलों के मालिक हैं। ऐसे ब्रह्म लोक में ये ब्रह्म ने होटल खोल रखा है, वो सबसे बढ़िया होटल है, वहां ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा बकवाद है। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता उनको धिक्कार रहा कि मेरी भक्ति भी नहीं करते। क्यों धिक्कार रहा है? कि उसके ग्राहक कम हो गए, वहां थोड़े जा है फिर। अब फिर सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपते वासुदेव है सर्वम इति और सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये क्या कहता है कि बहुत ही कुछ अंत के बहुत जन्म जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, उससे पहले तो ये अनुपासना में अपना जीवन नाश करते हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई पत्थरों की पूजा करते रहते हैं। एकाध ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और उसके विषय में बता दिया कि वो भी घटिया है, वो भी उसने बता दिया कि मेरी साधना भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, किए का कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो कह रहा है सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान मेरी भक्ति करता है, और ये बताने वाला साधु संत के और कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, केवल वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, और उसकी भक्ति से वो स्थान प्राप्त होता है जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि वो महात्मा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जो ये बताने वाला हो कि वासुदेव ही सब कुछ है। हमने गलती से अज्ञानी गुरुओं के कारण श्री कृष्ण जी को वासुदेव समझ लिया। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका वास, जिसकी प्रभुता, जिसका कंट्रोल सबके ऊपर हो। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। इसी प्रकार इनके पिता ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये वासुदेव नहीं है, सबके मालिक नहीं है। इससे अलग है एक अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी बोला है, वो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, इनकी तो स्थिति आपको बता दी। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा है, पुरुष माने प्रभु स्वामी, वो तो इन दोनों से अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो वो तीसरे नंबर का जो है वो है वासुदेव। तो यहां गीता ज्ञानदाता सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी वासुदेव की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता, परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता है। तो उसकी अपनी जानकारी देने के लिए आपको आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। वो आपका पिता है, हम सबका मालिक है, और हम यहां काल के जाल में बुरी तरह फंस गए। अब हमें तो ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारी तबुद्धि काल ने सीमित कर रखी है कि ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये कार और तेरी कोठी, या जैसा भी सिंपल गुजारा है, और इसी व्यवस्था में हमें फाइनल करके छोड़ दिया। और किसी भक्ति के लिए आत्मा तड़पती रहती है, उसके लिए एजेंट छोड़ दिए, नकली दूत, अपने झूठे नकली संत, और ये केवल इन्हीं देवता और ब्रह्म, मैक्सिमम ब्रह्म तक की साधना ये जानते थे, और ब्रह्म स्वर्ग लोक तक की महिमा गाया करते थे, स्वर्ग। और स्वर्ग आपको बताया गया था एक रेस्टोरेंट है, वहां अपनी पूंजी नाश करो, फिर आके यहां धक्के खाओ बटको। तो उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो स्वयं सतगुरु होते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब अबुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, दास के सत्संग और प्रमाणों से सुनकर आपको यो सहज में ज्ञान हो चुका है कि इस विश्व में कोई भी सतगुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। और सतगुरु का मिलना कितना कठिन है तो ये आपने गीता जी में पढ़ लिया। और उस पूर्ति को, सतगुरु की पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो ज्ञान वो स्वयं ही बताते हैं। ये वेद भी प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और वो तीन प्रकार से लीला करते हैं। पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को का पालन पोषण करने के लिए और इनको संभालने के लिए वो तीन प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके, ऊपर सिर पे छत्र है उनके और बहुत सुंदर उनका शरीर है, एक रोम में एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़े, इतना नूर है, इतना प्रकाश है भगवान की बॉडी का। तो वो परमात्मा एक रूप में वहां रहते हैं। परमात्मा के अंदर बहुत पावर होती है, वो अनेक रूप भी बना सकते हैं। दूसरी प्रकार की लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में, एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, वो स्वच्छ होता है, इसलिए परमात्मा उस पर आकर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। ये फिर वो धीरे धीरे जिस भी वर्ण में वो जाते हैं बालक रूप में और उसी में वो अपना उसी क्रिया को करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर जिस उद्देश्य से वो आते हैं ज्ञान प्रचार करने के लिए, एक सतगुरु की लीला करने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। और तीसरी प्रकार की वो लीला करते हैं परमात्मा, जब चाहें तब कभी भी प्रकट कहीं हो जाते हैं किसी साधु संत के रूप में या किसी अन्य रूप में। क्योंकि साधु संत के रूप में इसलिए आते रहे हैं क्योंकि अब वर्तमान में तो हमें ज्ञान हो गया, अब वर्तमान में तो आप जी को ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा की भक्ति और साधना के लिए ये बाह्य आडंबर कोई मायने नहीं रखते। दाढ़ी मूछ मुंडा लो और चाहे बढ़ा लो, कपड़े चाहे लाल पहन लो चाहे पीले पहनो, या अपने अक्षेत्र के अनुसार पहन लो, ये तो एक तन की रक्षा के लिए और सभ्य समाज में रहने के लिए वस्त्र अनिवार्य हैं। और भक्ति से मोक्ष होगा, मंत्र से मोक्ष होगा, ये तो अब स्पष्ट हो जाएगा, हो रहा है, हो चुका है और है भी यही सत्य। लेकिन पहले ऐसी धारणा थी कि साधु संत वही होते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखवा रखी हो या बड़ी जटा हो या कति मूंड मुंडवा रखा हो, दाढ़ी मूछ कति मुंडवा के गोटम गोट हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो ऐसी वेशभूषा वाले को हम साधु संत मानते थे और उन्हीं के निकट जाकर कुछ ज्ञान चर्चा सुनने की आशा करते थे। इसलिए परमात्मा साधु संत के रूप में ही प्रकट हुआ करते थे और कलियुग के अंदर वो विशेषकर एक जिंदा महात्मा के रूप में आए हैं, महापुरुषों को मिले हैं और सतगुरु की पूर्ति करने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर के अंदर एक किसान जाट परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और उनको भी परमात्मा इसी उद्देश्य से मिले थे। जो समागम अब चल रहा है ये उसी उपलक्ष में है कि इस फाल्गुन शुद्धी द्वादशी को परमात्मा स्वयं आए थे सचखंड से तलकर, और छुड़ानी के जंगल में, छुड़ानी के खेतों में, गांव छुड़ानी के खेतों में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, वहां पाली ग्वाला रूप में गए हुए थे, और उनके साथ में गांव के और भी कई 10-20 अन्य पाली ग्वाले थे जो उनसे ज्यादा आयु के थे। और परमात्मा वहां सन 1727 को जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ, और ये घटना जिस दिन परमात्मा मिले उसमें वो 10 वर्ष के थे, तो संवत 1784 सन 1727 और ये फाल्गुन सुदी फाल्गुन उतरते की द्वादशी दिन के 10 बजे परमात्मा उस छुड़ानी के जंगल में आके, जहां ये बालक पाली एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ के आहार कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, उससे 4-5 एकड़ दूरी पर सतलोक से अवतरित हुए और एक यात्री की तरह वहां से गुजर रहे थे। सभी पालियों ने प्रार्थना की कि महाराज जी भोजन खाओ, विश्राम करो। परमात्मा वहां खड़े हुए, उन्होंने आसन दे दिया, कुछ चद्दर वगैरह बिछा दी, वो बैठ गए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई भोजन तो मैं खाऊं नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव से भोजन खा के आया। तो उन ग्वालों ने, पालियों ने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान पालियों को नहीं था कि उन्होंने सोचा होगा कोई गांव सतलोक होगा कोई गांव। फिर उन्होंने कहा कि महाराज कितनी दूर है आपका गांव यहां से? परमात्मा ने बताया 16 संख कोस की दूरी पर है, 16 संख कोस। 16 संख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। कहते 16 संख कोस की दूरी पर हमारा स्थान है, हमारा निज गांव है, और हम यहां किसी उद्देश्य से आए हैं, इस काल के जाल को काटने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सोच लिया 16 कोस पर होगा, ठीक है महाराज जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे हम जाने नहीं देते महात्मा सा दूर अतिथि को, हमें पाप लगेगा जो हमारे पास से कुछ खाए पिए जाएगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अगर आप कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं तो मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, कुंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़ी उम्र के पाली थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 28-27 के, उन्होंने कहा बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो। गरीबदास जी 10 वर्ष के सबसे छोटी उम्र के बच्चे थे, वो खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बछिया को लाए जो 1.5 वर्ष की थी, दूध पीना छोड़ चुकी थी और अभी बैल ने टच नहीं करी थी, कुंवारी थी, लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे बाबा जी कैसे दूध देगी, इसको बच्चा तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा भी कोई ऐसा पात्र लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। गरीबदास जी के वहां रखा था एक साफ किया हुआ बर्तन, छोटा सा मिट्टी का। गरीबदास जी उस बछिया के नीचे पकड़ के उसने थनों के नीचे बैठ गए और परमात्मा खड़े हुए और बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा, थपकी मार दी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और पात्र भरते ही बंद हो गई। रत्न फिर भी लंबे लंबे लटक रहे थे। अब इस अचरज देख के जो दूसरे व्यक्ति थे वो बैठे थे पाली जो बड़ी उम्र के, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गरीब दास जी ने वो सारा दूध जो का तो परमेश्वर को थमा दिया, अगले बाबा जी आप तो गजब के करामात आपके अंदर। तो परमेश्वर ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर शेष कहने वे पालियो यो दूध पी लो, ये अमृत है, ये यहां का नहीं है, ये मेरे लोक से आया सतलोक से। और एक कुमारी गाय में दूध कहां से आया था, ये सतलोक से आया भाई, पी लो प्रसाद है ये। तो अन्य जितने पाली थे बड़े वो कहने लगे हम ना पीवे पाप का दूध, ये तो कुंवारी गाय से निकाला तूने और ना जाने क्या जंतर मंत्र का है, पता नहीं क्या हो जाएगा मारे, और तेरी जात का पता नहीं तू किस जाति से है, उसमें छुआछात भी चरम सीमा पर थी। इस करके वो कर्महीन उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावे भाई। गरीबदास जी ने कहा कि लाओ भगवान आपका जूठा दूध है, ये अमृत कब कब भाग्य में हो, कब कब मिले हमें। यूं कहकर उन्होंने भी कुछ दूध उससे पिया। उसके बाद परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया समझाया। फिर गरीबदास जी को प्रबल इच्छा हुई उस लोक को देखने की कि जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं, वहां कोई वर्द अवस्था नहीं, और जहां हम पहले रहते थे। परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान बताया। वो तड़फ गए अंदर से बुरी तरह। परमात्मा यही चाहते थे कि जब इच्छा प्रबल हो तभी हम वहां ले जाते हैं। प्रथम नाम दिया, फिर उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, उनकी स्थिति से परिचित करवाया और धर्मराज का लोक दिखाया, जहां ये काल भगवान बैठा है वो स्थान दिखाया, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को जहां ये भून कर उनमें से ये रस निकाल कर खाता है, जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है, फिर वहां से उसको भेज देता कर्माधार पर, जहां उसकी और जैसा भी संस्कार होता उस योनि में प्राणी चला जाता है, उसमें से वो गंध निकाल लेता है। जो सारे जीवन में ये मानव शरीरधारी प्राणी जितने भी आहार करता है उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। आप देखते हो इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाना, सुल्पा भांग तमाखू पीना, ये पीने की चीज है, सबसे ज्यादा को बद करवाना ताकि ये अंदर इसमें मटेरियल बढ़िया बने इसके खाने के लिए। और जीव मरता नहीं, आत्मा तो अमर ही है, गधे कुत्ते की भी अमर है, लेकिन ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान करता है, इसकी मजबूरी है, ना तो ये मनुष्य जीवन भी ना दे आपको। परमात्मा ने इसको श्राप इसलिए दिया था कि इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये मानव शरीर देगा, और मानव शरीर देगा तुम अपनी आत्माओं को जाके ज्ञान समझा के इनकी अज्ञान हटा के भक्ति करवा के इनको फिर ला सकता हूं। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने ये सब कुछ लीला की। तो तपतशिला के पास लेकर गए, वहां 1,00,000 प्राणी वहां भूने जा रहे थे जीव, जिसमें सभी वर्ग के सभी धर्मों के लोग थे। वहां परमात्मा के जाने के बाद उनकी जलन तो खत्म होगी, तपतशिला जो तई न्योकिनो गर्म थी, तब वो सभी बैठकर परमात्मा से कहने लगे भगवान हम यहां क्यों भूने जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने बताया कि आपने सतलोक के अंदर एक ऐसी भयंकर भूल करी थी जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये दंड मिल रहा है, और इसके बाद जो इस पृथ्वी पर जो पाप पुण्य तुम करते हो वो इन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी है, पाप के लिए नरक पुण्य के लिए स्वर्ग बना रखे है, और जन्म मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी। वहां परमात्मा ने तपतशिला के ऊपर दुख पा रहे प्राणियों से पूछा कि आप मुसलमान हैं, कहां जी आपने कौन सी साधना की थी जी कुरान शरीफ के आधार से, फिर हिंदुओं से पूछा आप कौन से धर्म से हैं, हम हिंदू हैं, क्या साधना की, वेदों और गीता के अनुसार। परमात्मा ने बोला कि गीता और वेदों का तुमने कैखे भी पता नहीं, तुमने तो दंत कथा के आधार से भक्ति की है और औरों को भ्रमित किया, सरहद निकाले और निकलवाए, आज क्या लाभ मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला जी, क्यों? वहां तो सारा स्पष्ट हो जाता है, यही बकवास चला इंसान की जब तक इसको प्रत्यक्ष दुख नहीं होता। इसी प्रकार सबसे कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो तब तो मेरी सुनते नहीं, अब तुम सभी कह रहे हो कि हमें छुटवा दो, हे भगवान फिर गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, तुम नीचे जाओगे और मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे, तब मेरा भक्त मेरा दास ये महिमा सुनाओगा मेरी, तो उससे दीक्षा लेना और तब तुम वापस जा सकते हो। ऐसा कहकर उनको संतोष दिया और कहा कि जिसको तुम निराकार बताते थे ब्रह्म को, यही तो सारा नाश करे बैठा है, ये तुम्हें खा रहा है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता मैं काल हूं अर्जुन, और बताओ और काल की पूजा कर रहे तुम, वो खुद कह रहा है मैं कसाई हूं, और फिर उसको नेक आदमी और भगवान मान बैठे तुम। तो वहां तो उनकी बुद्धि काम करे थी कि हाँ जी गलती बन गया, तो कहने का भाव ये है कि ये काल है, ये भक्ति ये पूजा के योग्य भी नहीं है, इसको इष्ट नाम इष्ट मानकर पूजना आपकी भूल रही, और अब वो आएगा सामने तुम्हें खाने के लिए, दूर से दिखा दिया कि देख वो आ रहा है, ये है वो काल, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, विकराल शरीर, उसका देख कर भी कलेजा फैला इंसान का, ऐसी सूरत थे भगवान की, और तुम इसको खोजने के लिए समाधि लगाते थे, और इसने कसम खा रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूं, दर्शन के दे से गुंडे का बता, वो भी कालजा पाठ जी आदमी देख लेते हैं, को भक्ति छोड़ दे, फिर खोज खाज का यू खोज जा, हरियो भगवान है, तो इसलिए इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भगवान इतना करूर होया कर मैं दर्शन ना दू चाहे सिर पटक लियो, बाप ऐसा निकम्मा हो सकता है? वो बाप ही नहीं है आपका, वो तो खलनायक है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये मेरा अटल घटिया सिद्धांत है अनुतम, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्तिम मुझ अव्यक्त माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मननते अबुधा, ये बेबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण, मेरी तो प्रतिज्ञा मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, मैं छुपा रहता हूं। अब ये छुपा रहता है, क्यों छुपा रहता है? कि इसमें दोष है, ये ऐसा जालिम है, अभी तक ये ब्रेसिर मह ऋषि ब्रह्म ब्रह्म की साधना करके अपना जीवन नाश कर गए और हमें और भ्रमित कर गए। तो उसके बाद सभी ने देखा उधर वो काल आ रहा था, अब परमात्मा ने कहा कि अब तुम जाओ यहां से, तुम्हारा समय हो गया है। काल ने क्या कर रखा है कि एक ऐसा समय निर्धारित कर रखा है, अलार्म रखा है, इतने समय तक ये तपस्या पर रहेंगे, उसके बाद उनको कर्माधार पर आगे जो कुछ भी बनना बनाना है वो धर्मराज के दरबार में जाएंगे। धर्मराज के दरबार में उनका कैलकुलेटेड होता है, जो कर्म आप प्रतिदिन करते हो इसकी एक फैक्स कॉपी डेली फटाफट आपके वहां धर्मराज की फाइल में पहुंच जाती है, जहां प्रत्येक आत्मा की न्यारी न्यारी फाइल है, और वहां जाते ही वो कैलकुलेटेड बाहर सामने आती है, जिस दिन दिन को वहां पहुंचना होता है, तो 10 एक एक सेकंड में जाओ भाई, उनके सामने होता है यो कुत्ता युगदा यो कुत्ता युगदा, चलो और ये स्वर्ग में ये नरक में फैसला कर देता है। अब जब वो सभी उड़कर चले गए प्राणी तपस्या से, और वो भोजन करने के लिए आ रहा था, गरीबदास जी को साथ लेकर परमात्मा आगे को चले, उसी की ओर चले। अब काल ने काल कहां रहता है, जैसे अभी तक आप 10 द्वार ही सुने थे, ये क्या करता है, एक 11वां द्वार है और वो 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में जाता है। अक्षर पुरुष के लोक से फिर वर्मा द्वार है जो सतलोक में जाता है। तो ये 11वें द्वार को बंद करे बैठा है, वहां तक ऋषि महर्षि कोई पहुंच ही नहीं सकता किसी भी साधना से जो ये करते रहे। वो साधना परमात्मा ने आके बताई है, ये 2 अक्षर के मंत्र का इकट्ठा जाप करना है। ये पहले ब्रह्म ओम नाम का अकेला जाप करते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति करा सकता है। इसके साथ ही दूसरा मंत्र जब लगता है तो ये फिर दूसरा मंत्र जो है ये 11वें द्वार को खोलता है। तो परमात्मा ने कहा कि देख भाई बेटा, ये आ रहा वो काल। अब उसकी शकल देखकर गरीबदास जी भी डर गए और कबीर साहब के पीछे हो गए कि महाराज मन तो डर लग गया, बेटा डर मत, मेरे पास ऐसा मंत्र है सतनाम और सारनाम, अब मैं इसका जाप करूंगा सिमरन श्वास से, देखना इसकी क्या हालत होगी। अपने आत्माओं, इन कथाओं से परमात्मा हमें भी संकेत करते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर कभी कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की, आपको जो भी नाम इस दास से प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है, तो प्रथम मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का जाप शुरू कर दीजिए, किसी प्रकार की भी है, आपको बड़ा सहारा मिलेगा। और सारनाम प्राप्त है तो वो शुरू कर दीजिए, तो एक विशेष आपके ऊपर रजा न्यारी होती दिखेगी आपको, यदि आपका कनेक्शन ठीक होगा, आपकी नियमित होगे, आप भक्ति में परमात्मा से जुड़े हुए होगे, तब ये काम करेगा। अब इस काल को चिंता बनी रहती है कि कोई भी प्राणी उस परमात्मा के विषय में जान ना ले, उसको ज्ञान ना हो जा, सतलोक के बारे में इसको पता भी ना हो, छींट भी ना लगे, इसलिए इसने स्वर्ग महास्वर्ग और इन्हीं की महिमा का गुणगान करवा रखे। और दूसरी चिंता ये रहती है कि कोई जीव मेरे जाल से निकल ना जा, इसलिए ये उस 11वें द्वार पर खुद पहरा देता हुआ कड़ला कर बैठे, कमर लगा कैसे, इतना बेईमान है। अब जब क्या देखा, उस काल ने देखा कि ये 2 व्यक्ति कैसे आ रहे हैं इधर को, कुछ ज्यादा ही भक्ति की है इन्होंने, सभी द्वारों को पार करके आगे ऊपर, तो ये भाग कर उस द्वार पर जाकर कमर लगाकर बैठ गए, जिससे हम आगे जाते हैं 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। तो गरीबदास जी ने देखा से परमात्मा के पीछे से झांक कर वो भाग रहा पीछे, तो गरीबदास जी बाहर आ गए, बाहर हो गए साइड में कि भाग्य भाई काल। तो अब वो जाके कमर लगाकर बैठ गया, परमात्मा बोले बेटा देखा, अब देखना, अब मैं मंत्र जाप करूंगा और ये कैसे हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि जैसे फनपति मंत्र सुन और रख फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़। जैसे सर्प यानी फनपति सर्प, जैसे सर्प ऐसे फन उठाकर और खड़ा हो यानी आक्रमण करने की तैयारी में हो, तो गारडू एक मंत्र बोल देता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो अपने आप मुरझा जाता है और फल अपने फन को इकट्ठा कर लेता है। वो उस पोजीशन में उस हिम्मत नहीं रहती उसकी कि वो उस फन को ऐसे फैलाए रखे, वो इकट्ठा हो जाता है यानी निष्क्रिय हो जाता है। तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना चेला बनाना था और हमारे लिए उनको दृढ़ करना था, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करवा के लाए उस बच्चे का, और जिसके कारण उस गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके कारण उनके दृढ़ता के कारण आज ये बाग लग गया भगवान का। तो उसको दृढ़ कर रहे थे कि ये पक्का गवाह बने, मेरा आंखों देख ले मेरी सामर्थ्य को और जो मंत्र में रखता हूं उसकी करामात को, तो उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। जैसे फनपति मंत्र सुन और रखे फन सकोड़, ले वे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। तो उसी समय परमात्मा ने सतनाम का जाप किया। जो ही परमात्मा ने सतनाम का जाप सिमरण किया, वो तो गरीब दास जी को दृढ़ कर रही थी, ना परमात्मा को कोई जरूरत नहीं थी सिमरण करने की, वो तो वैसे ही उसके सामने टिक नहीं सकता था, लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बता रही थी। तो जो ही मालिक ने कहा कि देख मैं श्वास से सिमरण करता हूं बेटा सतनाम का, लेकिन तुझे फेर दूंगा, अभी नहीं दूंगा इसको, जब तू प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा और तेरा पूरा विश्वास हो जाएगा फिर सतनाम दूंगा तुझे। तो जब सतनाम का जाप किया तो काल बैठा था कमर लगाए उस द्वार को बंद करेगा, और मैं द्वार को उसका शीश ऐसे झुक गया। कबीर परमात्मा और वो गेट आधे से ज्यादा खाली हो गया। कबीर परमात्मा बोले बेटा रख इसके सिर पर पैर और चल पर ले साइड में। गरीबदास जी कूद कर चढ़ गए उसके सिर पर परली साइड में जंप लगा गए। फिर परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के प्रेर अट गए। वो फिर अट गया, चल बाकी कोई और ना निकल जाए, दो तो गए सो गए। अब परमात्मा के और गरीबदास जी के अंदर जाते उसने फिर कट ला ली कमर, और फिर नो देख लेता दूर तक कोई है नहीं आसपास, तब जाता वहां खाने के लिए, और एक नजर उसकी वहीं रहती है गेट के ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि फिर अक्सर पुरुष के लोक में जो सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जब परमात्मा वहां पहुंचे तो वहां जो अक्सर पुरुष है वो ऐसा निकम्मा नहीं है, वो प्रत्यक्ष रहता है, वहां भी जन्म मृत्यु है, पशु पक्षी हैं, लेकिन यहां के अतिरिक्त वहां कुछ अधिक सुविधा है। लेकिन जन्म मृत्यु कर्माधार से दुख और सुख वहां भी विद्यमान है, वो भी लोक अच्छा नहीं है, आयु भले ही वहां की ज्यादा है उसका क्या फायदा। तो गरीबदास जी को प्रैक्टिकल करवा रहे थे सारा के यहां ये भगवान है, ये स्थिति है इनकी, और यहां के प्राणी इस स्थिति में, नीचे वालों से ये कुछ ठीक है, इनके शरीर भी कुछ ज्यादा अच्छे मटेरियल के हैं, लेकिन ये सभी मृत्यु और जन्म के अंदर और वृद्धावस्था इनमें भी रोग कष्ट इनके भी हैं, अपने कर्म आधार के नरक स्वर्ग भी वहां बना रखे हैं। तो वहां परमात्मा ने कहा कि बेटा इस क्षेत्र को पार करने के लिए आपको एक सतनाम के अंदर एक अक्षर और दूंगा, उस सतनाम के दूसरे अक्षर की कमाई हम यहां देते हैं, ये सभी यहां देंगे इसको, तभी आगे जाने देता है। और फिर परमात्मा गरीबदास जी को बर में द्वार पर लेकर गए। तो बर में द्वार पर इस अक्षर पुरुष के वहां अधिकारी गेट कीपर रहते हैं, तो वहां जाते ही परमात्मा को देखकर वो साइड पकड़ जाते हैं, क्योंकि मालिक के सामने तो सभी फाटक खुलते चले जाते हैं। और बताया कि उस दूसरे मंत्र की कमाई जो धन होगा आपका यहां डिपॉजिट करना होता है। फिर वो बारहवा द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। तो पुण्यात्मा ये जो सत्संग चल रहा है ये इस उपलक्ष में है, जो ये समागम चल रहा है कि इस दिन ज्येष्ठ फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और जिसके कारण उस जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दिया, उस ज्ञान में इतनी निर्मलता इतनी सत्यता है कि सभी ग्रंथों से मेल करके आपने आपको दास ने दिखा दिया, और जिस कारण से आज आप भगवान को पहचानने में सफल हुए और विश्वास हुआ आपको, ये उसी दिन की देन है जिस दिन परमात्मा स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा को मिले थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, उनके अंदर ये ज्ञान फीड कर दिया था, और ये आंखों देखा चश्मदीद गवाह बनाकर छोड़ गए भगवान अपने बालक को, जिसने ठोक कर गवाही दी सच्चे भगवान की, जो आज हमारे सहयोग में आई। इसलिए ये ज्ञान ये बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में और श्रोता बदलते रहते हैं, एक सामूहिक शिक्षा स्थल है ये, जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर पीएचडी तक का ज्ञान ऐसे ही कराया जाएगा एक ही लेक्चर से इन सत्संगों के माध्यम से। तो प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए आज आपको फिर से ये वही कहानी सुनाई जो 12 तारीख को पहले सुनाई थी आप। तो कहने का भाव यह है कि इसके बाद गरीबदास जी और परमेश्वर जब प्रवेश हुए, जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, और वहां जाने के बाद नीचे से जो आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर वाले, वहां जाते ही उनके ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ जाता है और उसकी पूरी बॉडी का शरीर का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना रोशनी हो जाता है वहां गए हुए प्राणी का। और परमात्मा के एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, यानी ब्रह्म और जीव में इतना अंतर है, सामर्थ्य में भी और उनके नूर में भी। ये कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है, ये बकवादी लोग थे, न कख भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि परमात्मा जैसे वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 में आपको दिखाया कई बार दास ने कि परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला सर्व उत्पाद प्रभु है, वो सब पापों का नाश करने वाला है और वो देखने में राजा के समान दिखाई देता है। राजा कैसे होता है, सिंहासन पर बैठता है, सिर पे मुकुट होता है और ऊपर एक छत्र होता है। तो गरीबदास जी ने आंखों देख करके फिर अपनी अमृतवाणी में कहा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नु, कि उस परमात्मा के सिर पे मुकुट है, ऊपर एक सफेद छत्र है, उस मालिक को नहीं देख पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी साधना और आपका ज्ञान गलत है। अब गरीबदास जी ने क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में, रोमकूप कहो बाल कहो, रोमकूप वो स्थान है जिसमें बाल उगता है। तो एक करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े, ऐसा नूर पूरी बॉडी, एक बाल का तो पूरी बॉडी का कितना होगा। तो वहां दिव्य दृष्टि काम करती है, चर्म दृष्टि नहीं रहती, चर्म दृष्टि देख ही नहीं सकती उसको। तो नीचे से जो साधु रूप में गए थे परमात्मा, जिंदा के महात्मा रूप के रूप में गए थे, वहां एक चवर रखा था, उसको उठाकर जिंदा महात्मा वाला रूप अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन यानी तकत पर बैठे भगवान के सिर पे चवर करने लगे। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भगवान ये है भाई जो सिंहासन पर बैठा, तकत पर बैठा, और ये बाबा जी यहां का कोई इनका पुजारी है, सेवक है। इतना सोच ही रहे थे तभी वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ और जिंदा वाला बाबा जी उसमें बैठ गए, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, भगवान उठ लिया, बाबा जी बैठ गया, और चवर करने लगे तेजो में रूप उस बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के स्वरूप पर सिंहासन पर बैठे हुए पे। गरीबदास जी उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, क्या हो गया, ये कैसे हो रहा। इतने में वो सोच ही रहे हैं कि भगवान कौन सा, इनमें सत्य पुरुष कौन है। इतने में वो तेजो में शरीर वाला परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा गए, और अकेले वह जिंदा महात्मा वाले शरीर का इतना नूर हो गया जितना पहले तेजो में शरीर वाले भगवान का, और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक है।